पाठ 37 अध्याय 25। यदि कोई एक शब्द है जो परिभाषित करता है कि हम क्या पढ़ाने और जांचने वाले हैं तो वह है जुबली। ये तोरह में वह स्थान है जहां हमें उस रहस्यमयी जयंती वर्ष के बारे में निर्देश मिलते हैं जिसके बारे में हम में से अधिकांश ने सुना है और आम तौर पर यह नहीं समझ पाते कि इसका उद्देश्य क्या है। फिर भी हमें यह जानना होगा कि जबकि जयंती एक विशेष एक वर्षीय समय अवधि का औपचारिक नाम है जो हर 50 साल में आती है, तोरह के दृष्टिकोण से यह उत्सव और उत्सव का वर्ष नहीं है और जैसा कि नाम से पता चलता है यह कुछ हद तक उदास है। कुछ लोगों के लिए यह सबसे स्वागत योग्य समय होता है, दूसरों के लिए यह उनके जीवन में एक गंभीर रुकावट होती है जो न केवल थोड़ी असुविधा और असुविधा लाती है बल्कि व्यक्तिगत समृद्धि का कुछ नुकसान भी लाती है। लैव्य व्यवस्था के इस 25वें अध्याय में संपत्ति के बारे में बहुत सारे नागरिक कानून हैं, खासकर जब वह संपत्ति या तो भूमि या दास हो। यह हमारे लिए दो कारणों से समझना महत्वपूर्ण है। एक, यह महत्वपूर्ण है कि हम समय की पृष्ठभूमि को समझ सकें, और दो, इसमें ऐसे सिद्धांत और पैटर्न हैं जो न केवल हमें यह दिशा देते हैं कि हमें संपत्ति के बारे में कैसे सोचना और व्यवहार करना चाहिए बल्कि मसीहा के कुछ कार्यों और उद्देश्यों के बारे में भी बताते हैं।
यह एक बहुत लंबा अध्याय है और इसकी कानूनी परिभाषाएं काफी विस्तृत हैं, इसलिए मैं इसे पूरा पढ़ना पसंद करूंगा ताकि हम इसे एक साथ जोड़ सकें और फिर हम कुछ खंडों को फिर से पढ़ेंगे क्योंकि हम उन पर अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे।
लैव्य व्यवस्था 25 सभी पर है, बहुत जटिल है ना?
आइए हम इसे समग्र दृष्टिकोण से आंकने का प्रयास करके शुरू करें। जुबली के केंद्र बिंदु पुनर्स्थापना और दया हैं, जो अपने लोगों के प्रति परमेश्वर की कृपा का सर्वोच्च दिव्य प्रदर्शन है। बेशक इसमें उनके लोगों द्वारा पुनर्स्थापना और दया के समानांतर कार्य शामिल हैं। दूसरे शब्दों में, जुबली में परमेश्वर ने एक अध्यादेश बनाया है जो उनके पूर्ण और आदर्श न्याय, निष्पक्षता, समानता, दया और मुक्ति के गुणों को प्रदर्शित करता है। लेकिन जैसा कि उनके सभी नियम हैं, जुबली का यह नियम केवल हमारे लिए चिंतन करने और गर्मजोशी और आनंद महसूस करने के लिए एक आदर्श के रूप में आकाश में तैरना नहीं है बल्कि इस नियम का शारीरिक रूप से पालन किया जाना है। इसे उनके लोगों द्वारा उनके लोगों के लाभ के लिए प्रकट, जिया और कार्यान्वित किया जाना है। वास्तव में जुबली का नियम उस नींव का सबसे अच्छा उदाहरण है जो परमेश्वर के 613 नियमों में से प्रत्येक को आधार प्रदान करती है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने पूरे मन, प्राण और शक्ति से प्रेम रखना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इस पुनर्स्थापना और दया को कार्यान्वित करने के प्राथमिक तरीकों में से एक है वास्तविक संपत्ति अधिकारों से संबंधित नियम और अध्यादेश के माध्यम से है जो लैव्य व्यवस्था 25 में स्थापित किए गए हैं। दोनों ही दृष्टिकोणों से कि एक कबीले या परिवार के लिए सामूहिक रूप से क्या सर्वोत्तम है, अर्थात एक संपूर्ण पारिवारिक इकाई के रूप में, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति की सुरक्षा करना।
इन जुबली कानूनों का एक और प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कोई भी उचित रूप से मेहनती व्यक्ति जो खुद को और या अपने परिवार को किसी भी कारण से गरीबी में पाता है उसे समय समय पर एक नई शुरुआत, जीवन पर एक नया पट्टा मिल सके। नई शुरुआत का वह अवसर ईश्वर द्वारा स्थापित जुबली पर आता है जो हर 50 साल में एक बार आता है।
किसी व्यक्ति के कर्ज में डूबे रहने का सामान्य कारण गरीबी होती है और इब्रानी लोगों के लिए किसी अन्य इब्रानी के पास गिरवी रखने का सामान्य कारण कर्ज होता है जिसे वह चुका नहीं सकता। हम में से जो लोग कर्ज लेने, कर्ज में डूबने के अटूट चक्र से गुजरे हैं उन्हें पता चलता है कि हम कर्ज नहीं चुका सकते, इसलिए हम पहले के कर्ज को चुकाने के लिए और भी अधिक कठिन शर्तों और शर्तों जिसे हम चुका भी नहीं सकते पर और अधिक उधार लेते हैं। वे इस अथाह गड्ढे को समझते हैं। ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं है और इस तरह हम कर्ज के बोझ तले अपना जीवन जीते हैं और अक्सर अंततः दिवालिया हो जाते हैं। हमारे अमेरिकी समाज में अधिकांश कर्ज या तो असुरक्षित कर्ज के रूप में होता है, क्रेडिट कार्ड या सुरक्षित कर्ज आमतौर पर हमारे घर या हमारी कार। अगर हम अपने घर के बंधक का भुगतान नहीं करते हैं तो हम अपना घर खो देते हैं। अगर हम अपनी कार का आर्ण चुकाने में चूक करते हैं तो उसे वापस ले लिया जाता है। इब्रानी प्रणाली में सभी कर्ज सुरक्षित कर्ज थे और लगभग हमेशा संपार्श्विक का साधन भूमि थी, क्योंकि यह एक कृषि आधारित समाज था। जमीन खोने पर आप न केवल अपना घर खो देंगे बल्कि आप अपनी खाद्य आपूर्ति भी खो देंगे और आप अपनी जरूरत की अन्य चीजें खरीदने के लिए आय उत्पन्न करने की क्षमता भी खो देंगे। बाइबल युग में ऋण के लिए दूसरी तरह की सुरक्षा आप या परिवार का कोई सदस्य था। इस प्रकार ऋणग्रस्त दासता की अवधारणा, एक इंसान ऋण के लिए संपार्श्विक बन गया। अधिक सही ढंग से यह वह काम था जो इंसान आपके लिए कर सकता था। जुबली वर्ष आंशिक रूप से इसराइल के लोगों के लिए इस रोजमर्रा की वास्तविकता से निपटने के लिए डिजाइन किया गया था। हमारे यहां संभवतः कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खेती किसानी की पृष्ठभूमि से आए हैं और इसलिए उनके लिए यह समझना थोड़ा आसान है कि कृषि समाज में एक परिवार द्वारा भूमि पर कब्जा करना कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अपने पूरे इतिहास में इसराइल एक कृषि समाज था, इसलिए हम अध्याय की शुरुआत यहोवा द्वारा मूसा से उस भूमि के बारे में बात करते हुए देखते हैं जो वह उन्हें दे रहा था, या बेहतर होगा कि उसने पहले ही दे दी थी, कनान की भूमि। अब मैंने अक्सर इस सादृश्य का उपयोग किया है कि जब हम तोरह सीखते हैं तो यह एक तरह से व्यवस्थित होता है, जैसे कि एक इंसान की परिपक्वता की प्रक्रिया। हम जीवन की शुरुआत विभिन्न विषयों के बारे में सामान्य और बल्कि सरल नियमों और तथ्यों को सीखते हुए करते हैं। जैसे जैसे हम उन्हें आत्मसात करते हैं और फिर जैसे जैसे हमारा दिमाग सक्षम होता है, अधिक जानकारी जुड़ती जाती है और प्रत्येक मामले पर एक बारीक बिंदु रखा जाता है। जल्द ही हम उन मुद्दों के बीच कुछ सूक्ष्म संबंध और समानताएं देखते हैं जो पहले पूरी तरह से अलग अलग लगते थे, और फिर प्याज की परतों को और भी छील दिया जाता है ताकि हमारे आसपास की दुनिया की गहरी पेचीदगियों को उजागर किया जा सके। बाद में जीवन में बहुत सी चीजें जिनके बारे में हमें लगता था कि हम उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, वे गहरे स्तर पर समझ में आने लगती हैं और हम वह हासिल करते हैं जिसे बाइबल ज्ञान कहती है, बहुत सारे तथ्यों के ज्ञान के विपरीत। हमें निर्गमन में परमेश्वर के नियमों की मूल बातों से परिचित कराया गया। इसके बाद लैव्य व्यवस्था के आरंभिक भागों ने हमें निर्गमन के उन नियमों के बारे में अधिक जानकारी दी ताकि उन प्रत्येक आज्ञाओं और नियमों के पीछे यहोवा के इरादे को बेहतर ढंग से समझा जा सके। बाद में लैव्य व्यवस्था में उन विशिष्ट विषयों के बारे में बताया गया है जिनके बारे में पहले ही परिचय दिया जा चुका है, और कुछ ईश्वर सिद्धांतों में बारीकियों को शामिल किया गया है। जैसे जैसे हम संख्या और व्यवस्था विवरण में प्रवेश करेंगे, हमें और भी अधिक निर्देश मिलेंगे जो बिंदुओं को जोड़ते हैं ताकि उन लोगों के लिए एक अधिक पूर्ण चित्र बनाया जा सके जिन्होंने तोरह की पहली तीन पुस्तकों के माध्यम से अपना रास्ता बनाया है। यहां लैव्य व्यवस्था 25 में हम कॉलेज में अपने अंतिम वर्ष में एक छात्र की तरह हैं, और अब जब हमने ज्ञान का एक ठोस आधार स्थापित कर लिया है और शर्तों को परिभाषित कर दिया है तो परमेश्वर के लिए विशेष महत्व के कुछ मामलों पर अधिक विस्तार से चर्चा की जाएगी, और उनमें से एक विवरण यह है, जबकि यह सच है कि परमेश्वर ने अब्राहम को कनान की भूमि दी थी, यह स्वामित्व का एक सीधा हस्तांतरण नहीं था जैसा कि हम सोच सकते हैं। इसके बजाय परमेश्वर ने कनान के स्वामित्व को बरकरार रखा है, और इसके बजाय अब्राहम के वंश इसराइल को एक दीर्घकालिक पट्टा दिया है, वास्तव में एक हमेशा के लिए पट्टा, हालांकि पट्टे की शर्तों को तोड़ने के लिए अस्थाई बेदखली भी सौदे का हिस्सा है।
जैसा कि हमारे वर्तमान अध्याय की दूसरी आयत में कहा गया है, जब तुम इस देश में प्रवेश करोगे तो मैं तुम्हें दे रहा हूं। आइए देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इब्रानी शब्द को देखें। वह शब्द है नाथन। हाँ, नाथन, ठीक उसी तरह जैसे कि राजा दाऊद की सेवा करने वाले नबी का नाम। और इस शब्द का अर्थ कुछ इस तरह है, दिया गया, आपको जोड़ा गया, आपको सौंपा गया, एक उपहार आपको सौंपा गया या आपके लिए अलग रखा गया। दूसरे शब्दों में नाथन स्वामित्व के हस्तांतरण को इतना नहीं दर्शाता है जितना कि आपको उपयोग करने के लिए कुल दिया जा रहा है, जैसे कि यह आपका हो, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति होने जैसा है। आप राष्ट्रपति पद के मालिक नहीं हैं, यह लोगों का है, बल्कि प्रत्येक राष्ट्रपति कुछ समय के लिए ही पद धारण करता है। यही कारण है कि मैं अब्राहम को भूमि को पट्टे के रूप में दिए जाने की उपमा देता हूं, न कि बिक्री के रूप में। यहोवा ने स्वामित्व बनाए रखा, लेकिन इसराइल को इसका उपयोग मिला। अब तोरह का अध्ययन करने वाले स्नातक छात्रों के रूप में यह महत्वपूर्ण है कि हम भूमि स्वामित्व के इस महत्वपूर्ण बाइबल सिद्धांत को समझें, अर्थात किसी ऐसी चीज पर कब्जा करना जो जरूरी नहीं कि आपकी हो। जोशुआ के दिनों में और आज भी जो इसराइल के पास था वह इसराइल की भूमि का स्थायी स्वामित्व नहीं है, बल्कि उनके पास एक स्थायी पट्टा है। इब्रानी में इस मुख्य सिद्धांत को अचुजाह कहा जाता है, जिसका अर्थ है पकड़ना। और यहोवा ने इसराइल से कहा कि चूंकि आप जमीन के मालिक नहीं हैं, इसीलिए आपके पास सिर्फ पट्टे पर जमीन है, इसलिए आप संपत्ति नहीं बेच सकते। हम में से कोई भी जिसने कभी कोई इमारत या घर पट्टे पर लिया है, वह इसे अच्छी तरह समझता है। हम मालिक के हस्तक्षेप के बिना संपत्ति का उपयोग कर सकते हैं, जब तक कि हम अनुबंध में निर्धारित शर्तों का सम्मान करते हैं। लेकिन एक चीज जो हम कभी नहीं कर सकते, वह है उस जगह को बेचना, क्योंकि हम कभी उसके मालिक नहीं रहे।
इसके अलावा इसराइल के साथ यहोवा के पट्टे समझौते अब्राहम और मूसा की वाचाओं में व्यक्त की एक प्रमुख शर्त यह है कि जिस भूमि पर वे अधिकार करने जा रहे हैं उसके संबंध में इसराइल को केवल उस भूमि पर खेती करनी है और हर 7 वर्षों में से 6 वर्षों में उत्पादन करना है। जिस तरह यहोवा ने हमारे ब्रह्मांड को बनाने के लिए 6 दिन तक काम किया और फिर 7वें दिन काम करना बंद कर दिया, उसी तरह इसराइलियों को भूमि से 6 साल तक काम करने के लिए कहना चाहिए और फिर 7वें दिन काम करना बंद करने देना चाहिए। यह सब इसराइलियों के लिए नहीं था, बल्कि भूमि के लिए था। यह इसलिए था ताकि भूमि आराम कर सके।
लेविय 25:1-7 को पुनः पढ़ें।
इसलिए 6 साल तक इसराइलियों को भूमि जोतनी है, उसमें बीज बोना है, उसकी देखभाल करनी है और उसकी फसल काटनी है। उन्हें अंगूर की बेलों की छंटाई करनी है और उसके मीठे फलों का आनंद लेना है। लेकिन 7वें साल, जिसे विश्राम वर्ष कहा जाता है, में इसराइलियों को भूमि के साथ कुछ भी नहीं करना था। वे नई अनाज की फसल नहीं बो सकते थे, वे अपने अंगूर के बागों की छंटाई भी नहीं कर सकते थे। छंटाई उनके अंगूर की बेलों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण थी। वास्तव में प्रतिवर्ष 2 बार छंटाई होती थी, एक गर्मियों में और दूसरी सर्दियों में। सप्त के वर्ष में इनमें से कुछ भी नहीं होना था।
भले ही 50 साल का जुबली चक्र लेव्य व्यवस्था 25 का मुख्य विषय है, लेकिन सबसे पहले इसे समझने और इसे परमेश्वर के सप्त के पैटर्न से जोड़ने के लिए एक आधार स्थापित किया जाता है। इसलिए सप्त वर्ष की अवधारणा पर चर्चा की जाती है। पद 5-7 को समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ ऐसा लगता है कि 7वें साल के सप्त के दौरान किसी को भी ऐसी फसल नहीं काटनी चाहिए और न ही खानी चाहिए जो बिना देखभाल वाले खेतों से प्राकृतिक रूप से उगती हो, और दूसरी तरफ यह कहता है कि आप वह सब कुछ काट सकते हैं जो जमीन खुद उगाती है। हमें इस पहेली का अच्छा जवाब देने के लिए प्राचीन ऋषियों की तलाश करनी चाहिए,
और वे हमें बताते हैं कि ये 2 अलग-अलग स्थितियां हैं, अनाज के पकने पर उसके बीज गिर जाना और फिर उन बीजों का अपने आप अंकुरित होना और नए अनाज के डंठल पैदा करना आम बात थी, लेकिन अनाज के डंठलों को काटना और फिर उनकी जड़ों से नए अंकुर निकालना और इस तरह अधिक अनाज के डंठल पैदा करना भी आम बात थी। पहले मामले में यह नया अनाज था क्योंकि यह बीजों से आया था, दूसरे मामले में यह पुराना अनाज था क्योंकि यह पहले से मौजूद पौधों से आया था। यह स्थिति इतनी आम और समझ में आने वाली थी कि उसी पौधे से दूसरी वृद्धि और यहां तक कि काफी सामान्य तीसरी वृद्धि को भी नाम दिए गए थे। दूसरी वृद्धि को इब्रानी में सफियाज कहा जाता था और तीसरी वृद्धि को शाचिस।
लैव्य व्यवस्था 25 का नियम यह है कि सप्त वर्ष में कोई व्यक्ति पिछली फसल से बचे बीजों से उगने वाले पौधों की कटाई और उन्हें खा नहीं सकता, लेकिन कोई व्यक्ति पिछली फसल की जड़ प्रणाली से उगने वाले दूसरे और तीसरे अंकुरों की कटाई और उन्हें खा सकता है। हालांकि इजरायली लोग खेतों में जाकर अनाज इकट्ठा करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे।
पद 7 पुनः इस सिद्धांत को सामने लाता है कि इजरायल की भूमि में कोई भी द्वितीय श्रेणी का नागरिक नहीं है, चाहे वे इब्रानियों के बीच रहने वाले विदेशी हों, इब्रानियों द्वारा खरीदे गए दास हो या गिरमिटिया नौकर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसराइल के रूप में रहने वाले सभी लोग विश्राम वर्ष में भूमि द्वारा स्वयं जो कुछ भी उत्पन्न होता था उसमें समान रूप से हिस्सा लेते थे। अब एक बात जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, मैंने कहा कि सप्त वर्ष भूमि के लाभ के लिए था, इब्रानियों के लिए नहीं, जबकि यह सच है। यहां दूसरा विचार यह था कि सप्त वर्ष में इब्रानियों को भोजन के लिए पूरी तरह से यहोवा पर निर्भर रहना पड़ता था। इसराइलियों को जो दिखाया जा रहा था वह यह था कि अंत में यह उनका काम नहीं था जो जमीन से भोजन लाता था, बल्कि यह केवल ईश्वर की ओर से एक उपहार था। इस 7वें वर्ष के दौरान इसराइल फिर से लगभग खानाबदोशों की तरह था, जैसे कि वे जंगल में 40 वर्षों तक अपने भरण पोषण के लिए पूरी तरह से प्रभु पर निर्भर थे। यदि ईश्वर ने भोजन नहीं दिया तो उन्होंने भोजन नहीं खाया। इसलिए सप्त वर्ष के आसपास आने पर इब्रानियों को बहुत अधिक विश्वास की आवश्यकता थी, और निश्चित रूप से चूंकि ईश्वर ने भोजन दिया था इसलिए यह उनके प्रति विश्वास को बढ़ाने का काम करता था, ठीक उसी तरह जैसे वादा किया गया मन्ना जो हर दिन बिना चूके आता था, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से निर्गमन पीढ़ी के लिए ईश्वर में विश्वास को बढ़ाता था।
लय व्यवस्था 25 का 8-13 पुनः पढ़ें।
पद 1-7 भूमि के लिए 7वें वर्ष पूर्ण विश्राम की आवश्यकता की याद दिलाते हैं। अब जबकि सप्त वर्ष का सिद्धांत स्थापित हो चुका है तथा कथित जुबली का आदेश दिया गया है, जुबली के लिए समय सीमा को समझाने के लिए एक मानक बाइबल शब्द का उपयोग किया जाता है। यह 7 सप्त वर्ष या 7 सप्ताह होना चाहिए, जिसका अर्थ है 49 वर्ष। फिर जुबली वर्ष 50वां वर्ष शुरू होता है। इस विशेष 50वें वर्ष की शुरुआत का प्रतीक योम किप्पुर, प्रायश्चित का दिन, तिशरी का 10वां दिन है, जो इब्रानी धार्मिक घटना कैलेंडर के अनुसार वर्ष का 7वां महीना है।
यह थोड़ा अजीब लग सकता है क्योंकि हमारे पास 50वें वर्ष की शुरुआत 10 दिन देरी से हो रही है, जबकि ऐसा होना तर्क संगत लगता है। मिश्री का पहला दिन रोश हशना है, जो यहूदी नव वर्ष है। फिर भी क्योंकि जुबली के लिए वास्तविक इब्रानी शब्द योबेल है, जिसका अर्थ है मेरहे का सींग, और मेरहे का सींग योग किप्पुर से जुड़ा हुआ है, तो जुबली का वर्ष मिश्री महीने के 10वें दिन शुरू होता है, जो योम किप्पुर है। सभी यहूदी इस बात से सहमत नहीं है, लेकिन इसके पीछे यही तर्क है।
और यह 50वां वर्ष जुबली एक विश्राम वर्ष होगा, ठीक वैसे ही जैसे प्रत्येक 7वां वर्ष विश्राम वर्ष होता है। अब देखिए कि जुबली का भविष्य सूचक अर्थ कैसे सामने आना शुरू होता है। 50वां वर्ष निश्चित रूप से पिंते कुस्त शावोत के 50वें दिन से जुड़ा हुआ है। प्रभु ने इसराइल से कहा कि यदि वे 50वां वर्ष जुबली नहीं मनाएंगे तो उन्हें उनकी भूमि से निर्वासित कर दिया जाएगा, और विदेशी गैर यहूदी उस चीज का आनंद लेंगे जो प्रभु ने अपने लोगों इसराइल के लिए तय की थी, और निश्चित रूप से ऐसा 1 से अधिक अवसरों पर हुआ।
यह पिंतेकुस्त 7 सप्ताह के दिनों प्लस 1 50 दिनों के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। 50वें दिन पवित्र आत्मा न केवल यहूदियों के लिए बल्कि गैर यहूदियों के लिए भी उतरा। विदेशी जो कभी भी इसराइल का हिस्सा नहीं थे, वे अचानक परमेश्वर के उद्धारक प्रावधान को जान सकते थे, यहोशुआ। परमेश्वर का प्रावधान उन सभी के लिए होगा जो विश्वास करते हैं, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो भौतिक इसराइल का हिस्सा नहीं थे। तथापि जो लोग 50 वर्ष के सप्त चक्र जुबली के प्रावधानों का पालन नहीं करते, वे अपनी भूमि से अलग कर दिए जाएंगे, जो लोग पिंतेकुस्त के प्रावधानों का पालन नहीं करते, 50वें दिन आने वाले पवित्र आत्मा की स्वीकृति, वे परमेश्वर के राज्य से अलग कर दिए जाएंगे।
अब 50 साल की जुबली अपने साथ चुनौतियों के साथ साथ आशीर्वाद भी लेकर आई। किसी को अपने सभी कामों से आराम करना होगा और केवल परमेश्वर के प्रावधानों पर भरोसा करना होगा। पिंतेकुस्त के साथ भी ऐसा ही है। हमें अपने सभी कामों को एक तरफ रखना है और यीशु के खून पर निर्भर रहना है। लेकिन चुनौती ये थी कि 50 साल की जुबली पर जिनके पास धन था, जिनके पास जमीन थी जो कभी दूसरों की थी, उन्हें इसे मूल मालिक को वापस करना था। पिंतेकुस्त के दिन हम पाते हैं कि हमें अपना सब कुछ मूल मालिक यहोवा को वापस करना चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी है वह सब उसका हो जाता है। हम आध्यात्मिक रूप से कंगाल हो जाते हैं। मैं एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो शायद अभी तक आपके दिमाग में नहीं आई होगी। जिस तरह से जुबली वर्ष के लिए यह योजना बनाई गई है, उसके अनुसार हर 50 साल में लगातार 2 सप्त वर्ष होते। 49वां वर्ष अपने आप में एक सप्त वर्ष था। प्रत्येक 7 वर्ष की अवधि का अंतिम वर्ष सप्त वर्ष था, और फिर 50वां वर्ष जुबली वर्ष एक और सप्त वर्ष था। इस प्रकार हमारे पास लगातार 2 सप्त वर्ष हैं। इस मुद्दे पर बहुत विवाद हुआ है। रब्बियों और संतों द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि जिस तरह से 50 वर्षों की गणना की जानी थी, वह यह था कि जयंती वर्ष को ही 50 वर्ष के चक्र के पहले वर्ष के रूप में गिना जाना था। इसलिए जयंती के बाद पहले 7 वर्ष की अवधि का पहला वर्ष वास्तव में 50 वर्षीय जयंती चक्र का दूसरा वर्ष था। उस सूत्र का सुझाव देने से 7वें 7 वर्षीय चक्र का अंतिम वर्ष जयंती था। इसे 7वें वर्ष का सप्त 50 वर्षीय जयंती के साथ मेल खाता है। ये सुझाव क्यों? क्योंकि ये संत ये नहीं देख पाए कि परमेश्वर के लिए यह कैसे संभव था कि वे लोगों से लगातार 2 वर्षों तक फसल बोए और कांटे बिना जीवित रहने की अपेक्षा करें, जिसके परिणाम स्वरूप लगातार 2 सप्त वर्ष होते हैं। 49वां वर्ष सप्त वर्ष, उसके तुरंत बाद 50वां वर्ष जयंती सप्त वर्ष। हालांकि तोरह के शब्द काफी स्पष्ट हैं और यह विचार बिल्कुल भी समर्थित नहीं है। वास्तव में लगातार 2 सप्त वर्ष होने थे। ठीक है, बस इसे थोड़ी देर के लिए अपनी यादों के भंडार में रख लें।
आइए अब अपना ध्यान पद 10 पर केंद्रित करें। यह एक छोटा सा कथन है जो हमारे सामने से गुजरता है और वास्तव में जुबली के मामले का सार है। ये कहता है, तुम्हें पूरे देश में स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए 50वें वर्ष को पवित्र करना है। अन्य संस्करणों में यह कहा जाएगा, पूरे देश में स्वतंत्रता की घोषणा करो, और कुछ संस्करणों में कहा जाएगा, पूरे देश में मुक्ति की घोषणा करो। हम जिस शब्द पर गौर करना चाहते हैं उसका अनुवाद स्वतंत्रता या आजादी या रिहाई के रूप में किया गया है, और इब्रानी शब्द है डेरोर। यह शब्द डेरोर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जुबली के संपूर्ण उद्देश्य का केंद्र है, क्योंकि यह हमारे लिए यह घोषणा करता है कि जुबली वास्तव में किस बारे में है। हाल ही तक यहूदी और ईसाई विद्वान दोनों ही इस बात पर सहमत थे कि डेरोर के लिए स्वतंत्रता और स्वतंत्रता स्वीकार्य अनुवाद थे, लेकिन अक्कादियन भाषा में पाए जाने वाले इब्रानी समानार्थी शब्दों की वर्तमान बेहतर समझ के साथ हम इस शब्द के अधिक सटीक अर्थ पर पहुंचे हैं। याद दिलाने के लिए, अक्कादियन को अब बाइबल इब्रानी की पूर्ववर्ती भाषा के रूप में जाना जाता है। दूसरे शब्दों में, बाइबल इब्रानी अक्कादियन भाषा से विकसित हुई, और हमारे पास अक्कादियन में लिखे गए बहुत सारे प्राचीन अभिलेख हैं जो बाइबल इब्रानी को आधुनिक दिनों के शब्दों में अनुवाद करने में हमारी मदद करने के लिए एक तरह के रोसेटा स्टोन के रूप में कार्य करते हैं। मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि समान होने के बावजूद बाइबल इब्रानी आधुनिक इब्रानी के समान नहीं है। इसलिए हमारे पास बाइबल में कई इब्रानी शब्द हैं जो अब आधुनिक बोली जाने वाली इब्रानी में उपयोग में नहीं है। हमारे पास कुछ इब्रानी शब्द भी हैं जिनका प्रयोग बाइबल में इतना कम होता है कि उस शब्द का अर्थ अस्पष्ट और अनुवाद करना कठिन है। डेरोर उन शब्दों में से एक है, लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों में
इसका अर्थ बहुत अधिक सटीक और समझा जाने लगा है और इसका अर्थ है मुक्ति।
डेरोर अक्कादियन शब्द एंडुरारू से आया है। यह एक कानूनी शब्द था और आमतौर पर तब इस्तेमाल किया जाता था जब कोई नया राजा सत्ता में आता था और कर्ज माफी और गिरमिटियां नौकरों को उनके मालिकों से मुक्त करने की घोषणा करता था। उस शब्द का एक रूप भी इस्तेमाल किया जाता था जिसका अर्थ था स्वतंत्र रूप से घूमना।
अतः स्वतंत्रता और मुक्ति मूल बात से भटक जाते हैं। डेरोर या मुक्ति की अवधारणा से अधिक मेल खाती है, विशेष रूप से बंधन और कर्ज से मुक्ति के रूप में। अब तक हमारे पास जुबली की एक तस्वीर है तो यह एक लगातार दूसरा विश्राम वर्ष है इसराइलियों के लिए। यह हर शताब्दी में दो बार होता है जिसमें उन्हें नए अनाज की बुवाई, रोपण या कटाई करने और अपने अंगूर की बेलों की देखभाल करने या किसी भी तरह से अपने खेतों या पैरों की देखभाल करने से मना किया जाता है, जिसमें उनके सबसे महत्वपूर्ण जैतून के पैर भी शामिल हैं। दो, जुबली कर्ज और गिरमिटियां दास्ता से मुक्ति का वर्ष है। तीन, एकमात्र भोजन जिसे खाया जा सकता था चाहे जानवरों द्वारा या मनुष्यों द्वारा, वह था जिसे इस कठिन दो वर्ष की अवधि के लिए तैयारी में संग्रहित किया गया था, जिसके दौरान कोई नई उपज नहीं उगाई जा सकती थी। एकमात्र अन्य भोजन जिसे खाया जा सकता है वह है जो बिना किसी रोपण, देखभाल या छंटाई में मनुष्य के हाथ के बिना अपने आप जमीन से उगता है। अब हमें एक और वाक्यांश मिलता है जिसका अर्थ बेहतर तरीके से ध्यान में आता है क्योंकि हम जुबली के मुक्ति पहलू को समझाते हैं। पद 13 इन शब्दों के साथ समाप्त होता है, तुम में से हर एक को अपनी जमीन पर लौटना है। या एक बेहतर अनुवाद जो कि अधिकांश बाइबलों में है तुम्हारी जमीन। जब तक हम समझते हैं कि कब्जा का मतलब स्वामित्व नहीं है, इसका अधिक सटीक अर्थ है धारण करना, जैसा कि पट्टे पर लेना। मुझे उम्मीद है कि आप इसका अनुसरण कर रहे हैं क्योंकि ये तुच्छ मामले या महत्वहीन विवरण नहीं है। वे बहुत कुछ के लिए मंच तैयार करते हैं जो हमें अंततः नया नियम में बताया जाएगा। हर व्यक्ति अपनी जमीन पर वापस लौटता है का विचार यह है कि किसी समय पर एक व्यक्ति अपनी जमीन पर नहीं था क्योंकि वह जमीन किसी और को बेच दी गई थी या उसे किसी ऋण का भुगतान करने के लिए जब्त कर लिया गया था। ज्यादातर बार वह जमीन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित की गई थी, ऐसा किसी अवैतनिक ऋण के कारण हुआ था। तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं, अचुझाह का इब्रानी सिद्धांत यह था कि कोई भी व्यक्ति भूमि का मालिक नहीं था, वे इसे बस कुछ समय के लिए पट्टे पर देते थे। ईश्वर सभी भूमि का मालिक था और अब्राहम के साथ वाचा में भी यह यहोवा से अब्राहम को स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं था, यह सिर्फ पट्टे का निष्पादन था और उस पट्टे की अवधि हमेशा के लिए थी। यही सिद्धांत निश्चित रूप से खाद्य श्रृंखला में आगे बढ़ता है, जहां एक भूमि मालिक वास्तव में भूमि का मालिक नहीं होता है, वह भूमि को धारण करता है इस विचार के साथ कि वह इसे तब तक धारण करता है जब तक मालिक उसे इसे धारण करने की अनुमति देता है। और मालिक कौन है? यहोवा। यदि भूमि का धारक ऋण पर संपार्श्विक के रूप में भूमि का उपयोग करता है लेकिन ऋण का भुगतान नहीं कर सकता है, तो भूमि का स्वामित्व उस व्यक्ति को हस्तांतरित कर दिया जाता है जो ऋण धारण करता था। लेकिन वह व्यक्ति भूमि का मालिक नहीं था, वह सिर्फ भूमि धारण कर रहा था। स्वाभाविक प्रश्न यह है कि अब जो व्यक्ति जमीन पर कब्जा कर रहा है वह कब तक उस पर कब्जा कर सकता है? और इसका उत्तर है सिर्फ जुबली वर्ष आने तक। जुबली वर्ष पर अगर कोई व्यक्ति जब्ती के जरिए जमीन का एक टुकड़ा हासिल करता है तो उसे वह जमीन मूल मालिक को वापस देनी होती है, या अगर मूल मालिक की मृत्यु हो गई है तो नए मालिक को उसे मूल मालिक के परिवार या कबीले को वापस देना होता है। जुबली की इस व्यवस्था के तहत मूल मालिक को जमीन वापस पाने के लिए कुछ भी भुगतान करने की जरूरत नहीं थी। पद 14 से 22 थोरा और विस्तार से बताते हैं कि यह सौदा कैसे पूरा होना था। लेव्य व्यवस्था 25 का 14 से 22 को पुनः पढ़ें। ठीक है,
समझिए, परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से इब्रानियों को जो व्यवस्था दी है उसमें संपत्ति के स्वामित्व का आधारभूत सिद्धांत यह है कि किसी व्यक्ति के पास जमीन होने पर वह उसे किसी भी तरह से किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकता है। यह अधिकतम समय 49 साल है। अगर उस व्यक्ति या परिवार ने अपनी जमीन किसी दूसरे को दे दी है या यूं कहें कि बेच दी है, तो उसे जुबली वर्ष पर वह जमीन वापस मिल जाती है।
यह संपत्ति के अधिकारों की अमेरिकी प्रणाली से इतना अलग है कि इसे समझाना मुश्किल हो सकता है। अमेरिका में संपत्ति के स्वामित्व को एक पवित्र अधिकार माना जाता है। यह सिर्फ रखने के लिए नहीं है, यह आपका है। जब तक आप चाहें तब तक आप इसे अपने पास रख सकते हैं। हालांकि अगर आपने इस पर ऋण बंधक ले रखा है और ऋण धारक इसे जब्त कर लेता है और आप जल्दी से ऋण का भुगतान नहीं कर पाते हैं, तो आप उस संपत्ति को हमेशा के लिए खो देते हैं। अब यह नए मालिक के पास है जब तक वह इसे रखना चाहता है। आप उस संपत्ति पर कोई भी अधिकार नहीं रखते हैं। नया मालिक इसे किसी और को बेच सकता है, वह इसे रख सकता है और अगली पीढ़ी को वसीयत कर सकता है और यह उनका हो जाता है। सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए नहीं, बल्कि स्वामित्व के लिए। यह बाइबल की प्रणाली का तरीका नहीं है। मैं हमारी प्रणाली की निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपको अंतर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अतः तोरह में हम जिस प्रणाली के बारे में पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा किसी से भूमि का टुकड़ा प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला भुगतान दो बातों पर आधारित होता। धा एक, जयंती वर्ष आने तक वह भूमि कितने वर्षों तक उसके कब्जे में रहेगी तथा उसके बाद उसे भूमि उसके मूल धारक को लौटाने के लिए बाध्य किया जाएगा। और दो, उस समयावधि में उस भूमि पर उगाई जाने वाली फसलों का मूल्य कितना होगा। बस स्पष्ट करने के लिए, यदि कोई व्यक्ति जुबली वर्ष के बाद पहले वर्ष में भूमि का एक टुकड़ा प्राप्त करता है तो वह इसे अधिकतम संभव समय के लिए रख सकता है, 49 वर्ष, अगली जुबली की शुरुआत तक। इसलिए यदि यह गणना की गई कि उसे इससे 49 वर्ष की फसल मिलेगी, वास्तव में यह केवल 42 वर्ष हो सकता है, क्योंकि उस समय में 7 विश्राम वर्ष शामिल होंगे जिसमें वह न तो रोपण कर सकता था और न ही कटाई कर सकता था, और उन 49 वर्षों की फसल का मूल्य $100 था। तो वह भूमि पर अधिकार रखने के लिए पूर्व धारक को $990 का भुगतान करेगा। 50वें वर्ष में भूमि स्वचालित रूप से पूर्व मालिक के पास वापस आ गई और तब तक उसकी ही रही जब तक कि वह इसे फिर से नहीं खो देता। दूसरी ओर, यदि पिछली जयंती के बाद कई वर्ष बीत गए हैं और अगली जयंती मान लीजिए 14 वर्षों में आएगी और कोई व्यक्ति उसी भूमि के टुकड़े को प्राप्त करना चाहता है, तो प्रत्येक वर्ष की फसलों का मूल्य $100 के आधार पर गणना करते हुए वह भूमि के लिए केवल $1400 का भुगतान करेगा, क्योंकि वह भूमि को बहुत पहले ही वापस कर देगा और इस प्रकार उसे पहले मामले की तुलना में भूमि का कम उपयोग प्राप्त होगा। गरीबों और कर्ज में डूबे लोगों के लिए जुबली एक बड़ी बात थी, कुछ ऐसा जिसका वे बेसब्री से इंतजार करते थे। अमीर और भाग्यशाली लोगों के लिए यह कुछ ऐसा नहीं था जिसका वे विशेष रूप से स्वागत करते थे। उनके लिए जुबली वर्ष नुकसान था, उनकी बहुत सारी संपत्ति का नुकसान।
लेकिन अमीर और गरीब दोनों के लिए एक बात समान थी कि 2 साल की अवधि के लिए ताजा उपज मिलना मुश्किल था और इसकी गुणवत्ता आम तौर पर सामान्य से बहुत खराब थी, क्योंकि इसमें लगातार 2 सप्त वर्षों की शुरुआत से पहले पिछली फसल की घटिया दूसरी और तीसरी कटाई शामिल थी। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं कि अमीर लोगों ने विदेशी व्यापारियों से उपज खरीदकर इसे हल किया जो इसराइल के बाहर से उगाए गए खाद्य पदार्थ लाते थे।
अब पद 18 अध्यादेशों की श्रृंखला में अचानक रुकावट को दर्शाता है। अचानक परमेश्वर यह कहता है, तुम मेरे नियमों का पालन करोगे और उनका ईमानदारी से पालन करोगे ताकि तुम सुरक्षित रूप से धरती पर रह सको। पद 19 उसी विचार को आगे बढ़ाता है, भूमि अपनी उपज देगी और तुम पेट भर खाओगे और तुम उस पर सुरक्षित रूप से रहोगे।
इतिहास इस कथन के पूर्णतः और आश्चर्यजनक रूप से सटीक होने का प्रमाण देता है। जिन दिनों इसराइल ने यहोवा के मार्गों पर चलने का प्रयास किया उस समय भूमि चमत्कारिक रूप से उपजाऊ थी। बाइबल के समय में जब इज़राइल इस भूमि पर था तो यह मध्य पूर्व का अन्न भंडार था। इसकी उपज अपनी गुणवत्ता और मात्रा के लिए प्रसिद्ध थी।
बेबीलोन, फारसी और रोमन अभिलेखों से पता चलता है कि ये विजेता पवित्र भूमि में उत्पादित शानदार फलों, अनाजों और सब्जियों का लाभ उठाने के लिए कितने इच्छुक थे।
फिर भी जब भी इसराइलियों को निर्वासित किया गया तो भूमि ने उत्पादन करना बंद कर दिया। जब अश्शूरियों ने एप्रेम इसराइल के उत्तरी राज्य को खाली कर दिया और उनकी जगह विदेशियों को ला दिया तो तुरंत भूमि संकट में पड़ गई। लगभग 2 शताब्दियों बाद हम यहूदियों के बारे में पढ़ते हैं जो बेबीलोन में अपनी कैद से वापस लौटे और बर्बाद खेतों, बिना देखभाल वाले अंगूर के बागों और नष्ट हो चुके यरूशलेम में पहुंचे।
सदियों से 70 ईसवी में रोमनों द्वारा मंदिर के विनाश और यहूदी लोगों के बड़े हिस्से को निष्कासित करने के बाद भूमि में लगातार गिरावट शुरू हुई, जो अधिक विदेशी उपस्थिति और नियंत्रण और कम इब्रानी उपस्थिति और नियंत्रण के साथ मेल खाती थी। अंततः इसराइल एक बहुत ही कम आबादी वाला स्थान बन गया क्योंकि भूमि बंजर हो गई थी।
इतिहास की किताबें 18वीं, 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में पवित्र भूमि पर आने वाले पर्यटकों के वर्णनों से भरी परी हैं, जहां एक छोर से दूसरे छोर तक यात्रा करने के बाद वे हैरान रह गए कि कोई ऐसी जगह पर जीवित रह सकता है। 1867 में फिलिस्तीन की यात्रा के दौरान मार्कस ट्वेन ने कहा, सभी भूमियों में से निराशाजनक दृश्यों के लिए फिलिस्तीन सबसे अच्छा है। पहाड़ियां बंजर और नीरस हैं, घाटियां बदसूरत रेगिस्तान हैं, जहां भयानक घावों और विकृतियों से ग्रस्त भिखारियों का झुंड रहता है। फिलिस्तीन टाट और राख में डूबा हुआ है।
इस पर उन्होंने कहा कि पवित्र भूमि अब एक उजाड़ देश है जिसकी मिट्टी काफी उपजाऊ है लेकिन पूरी तरह से खरपतवारों से भरी हुई है, एक खामोश शोकपूर्ण विस्तार। यहां एक ऐसा उजार है जिसे कल्पना भी जीवन और क्रियाकलापों की भव्यता से नहीं सजा सकती। हम सुरक्षित रूप से ताबोर पहुंच गए। हमने पूरे रास्ते में एक भी इंसान नहीं देखा। वहां कहीं भी कोई पैर या झाड़ी नहीं बची थी। यहां तक कि जैतून और कैक्टस, जो बेकार मिट्टी के पक्के दोस्त थे, भी लगभग देश छोड़कर चले गए थे।
जॉर्ज एडम स्मिथ, एक भूगोलवेत्ता जिन्होंने यूरोपीय आप्रवासियों द्वारा किए गए परिवर्तनों से पहले 1830 में फिलिस्तीन का दौरा किया था, ने देश को बंजर, वृक्षविहीन भूमि और मलेरिया फैलाने वाले खरपतवार से भरे दलदलों का मिश्रण बताया था। उनका कहना है कि जिन यहूदियों ने यह बेकार जमीन खरीदी थी उन्हें मृत्यु की संतान कहा गया, क्योंकि उनमें से कई जीवित नहीं बचे।
जब इसराइल उस भूमि पर नहीं होता तो भूमि परती होकर प्रतिक्रिया करती है। हम इसे अगले सप्ताह जारी रखेंगे।